जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 3 पयार संख्या 70 प्रभु कहे सन्यासी र भक्ष नहे उपकरण यहाँ खाए कई चहाय इंद्रिय वारान शब्दार्थ प्रभु कहे महाप्रभु ने कहा सन्यासीरा सन्यासी से भक्ष खाना जाना नहे यह नहीं है उपकरण विभिन्न पकवान यहा यह खाइले यदि खाए जाए कैसे कैसे हाय होगा इंद्रिया इंद्रिय वारान नियंत्रण अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की तो अनुवाद ध्यान से सुनिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है यदि वह ऐसा करता है तो फिर वह अपनी इंद्रियों को किस तरह वश में रख सकता है तात्पर्य उपकरण शब्द चावल के साथ खाए जाने वाले दाल तरकारी तथा नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को सूचित करने वाला है किंतु सन्यासी के लिए ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खाना उचित नहीं है यदि वह ऐसा करता है तो वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों को स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते थे क्योंकि सारा वैष्णव संप्रदाय वैराग्य विद्या अर्थात यथासंभव वैराग्य भाव का अनुशीलन करने वाला है श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी परामर्श दिया था कि वे न तो अत्यधिक स्वादिष्ट व्यंजन खाएं, न अच्छे वस्त्र पहने न भौतिक विषयों की चर्चा करें। सन्यासियों के लिए ये बातें वर्जित हैं। भक्त कभी भी ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करता जो पहले कृष्ण को अर्पित न हुई हो कृष्ण जो भी अच्छे व्यंजन अर्पित किए जाते हैं कृष्ण को जो भी अच्छे व्यंजन अर्पित किए जाते हैं वे गृहस्थों को दे दिए जाते हैं वैसे कृष्ण को अनेक उत्तम वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे हार पलंग के बिछौने उत्कृष्ट आभूषण उत्तम भोजन यहाँ तक कि अच्छी तरह से तैयार किए पान सुपारी किंतु विनित वैष्णव अपने शरीर को भौतिक तथा घृणित मानकर ऐसी वस्तुएं स्वयं ग्रहण नहीं करता वो सोचता है कि ऐसी वस्तुएं ग्रहण करने से वो भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध करेगा जो सहजिया है वे ये नहीं समझ सकेंगे कि जब से चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से दो अलग से केले के पत्ते लाने के लिए और एक में अपने लिए थोड़ा सा प्रसाद देने के लिए कहा था तो इसमें उनका क्या उद्देश्य था ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे सन्यासी रा भक्ष नहे उपकरण, यहाँ खाइले कैचे हय इंद्रिय वारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो फिर वह अपनी इंद्रियों को किस तरह वश में रख सकता है। तो ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर रुकना। तो आप सबको याद होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया कठुआ में जाकर बड़े उत्साह के साथ, और संन्यास ग्रहण करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अपने और दो पार्षदों के संग में राड देश में भ्रमण करते करते कहां पहुंचे, गंगा के किनारे। तो तब अद्वैत आचार्य से मुलाकात होती है और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को नए वस्त्र प्रदान करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो उनके पास केवल एक ही वस्त्र थे, और एक बार वो स्नान कर लिए उन वस्त्रों के साथ तो दोबारा पहनने के लिए और वस्त्र नहीं थे। तो जब गंगा को यमुना समझकर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और सामने देखा कि अद्वैत आचार्य नौका में बैठे हुए हैं, और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को देखकर वंदन करते हैं और महाप्रभु को कहते हैं कि ये रहे आपके लिए नए वस्त्र, गोपीनादि वस्त्र धारण कीजिए और मेरे घर चलिए, वहां भिक्षा ग्रहण कीजिए। बल्कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य था अद्वैत आचार्य का कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद सर्वप्रथम किसी के घर भोजन करने के लिए गए तो वो कौन थे, अद्वैत आचार्य। बल्कि दो तीन दिन वो चल चल के हुए थे उन्हें और कुछ खाया नहीं था उन्होंने, और अद्वैत आचार्य सारे वैष्णवों को लेकर उद्विग्न थे। बल्कि जब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया ये न्यूज पता चली तो अद्वैत आचार्य सारे वैष्णवों को लेकर गंगा के किनारे पहुंच गए कि अभी महाप्रभु हमारे जीवन में नहीं रहे तो हमें जीवन धारण करना हमारे लिए उचित नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु के विरह में सब लोग अपने शरीर को त्यागना चाहते थे गंगा में जंप लगाकर कूदकर। तो लेकिन आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा रुको रुको, हे वैष्णवो, इतनी जल्दी क्या है आपको शरीर त्यागने की, अभी कौन आने वाले हैं, महाप्रभु आने वाले हैं। तो सब लोग रुक जाते हैं। अद्वैत आचार्य लीडर है, नवद्वीप के भक्तों के लीडर कौन है, अद्वैत आचार्य। और वैसे महाप्रभु के भक्तों में जो अग्रगणी है वो कौन है, श्रीवास ठाकुर। इसलिए हम गाते हैं बोलते हैं श्रीवास आदि भक्त वृंद, श्रीवास लीडर है भक्तों के, उनसे भी ऊपर ये अद्वैत आचार्य है। तो ऐसे अद्वैत आचार्य ने कहा कि आप मेरे घर चलिए और थोड़ा सा रूखा सूखा जो भी मैंने बनाया है उसको आप ग्रहण कीजिए। तो वास्तव में चैतन्य लीला बहुत स्वीट है। कैसी है, स्वीट है, लेकिन उसके लिए हमारा हृदय भी क्या होना चाहिए, श्रवण करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए लालायित होना चाहिए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जब महाप्रभु का गुणगान करते हैं तो वह हमेशा एक प्रार्थना करते हैं, पुना भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, जीवाय गुरु का गौरव चंद्र अवतार। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं क्या आप कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर सकते हो, अन्य अवतारों का सरलता से वर्णन कर सकते हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करना उसके लिए महाप्रभु की कृपा की परम आवश्यकता चाहिए। और वही व्यक्ति महाप्रभु का गुणगान कर सकता है जिस व्यक्ति के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं बारंबार सारे भक्तों के संग में क्या कर रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं, ताकि मेरे जिह्वा में कौन स्फुरित हो जाए, गौर चंद्र अवतार चैतन्य महाप्रभु मेरे जिह्वा से स्फुरित हो जाए। और आज वास्तव में आज का जो तात्पर्य है वो इसी पर ही है। किस पर है? जिह्वा के ऊपर है। तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदूरमति। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कह रहे हैं कि उपकरण का अर्थ है वैरायटीज ऑफ व्यंजन्स, जो बहुत सारे प्रकार के जो भोजन है वो यदि सन्यासी खाएगा तो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सन्यासी को अति स्वादिष्ट और वैरायटी के पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे महाप्रभु के बारे में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, हाँ, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंकल थे, जिनसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दीक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर एक विशेष प्रार्थना करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तो सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली हूं। कोई पूछे कि अरे क्या आपके जीवन में ऐसा दुर्भाग्य घटित हुआ है, अभी हमारे जीवन में कितनी विपदाएं आती हैं, लेकिन हम सहन करते हैं। तो वो कहते हैं नाराधितम कलियुगे तव पाद पद्मा। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की आराधना नहीं की, कौन से युग में जन्म लेकर? कलियुगा में। नालोकितम कलियुगे तव गौर देहम। और कलियुगा में जन्म लेकर जिस व्यक्ति ने गौरांग महाप्रभु के दिव्य देह का दर्शन नहीं किया है, ना करणिता कलियुगे तव तत्व गाथा। और कलियुगा में जन्म लेकर जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को कानों के माध्यम से नहीं सुना है, चैतन्य चंद्र भवता परिवंशितो हम। वो अपने आप को कोस रहे हैं, कहते कि देखो हे चैतन्य देव, मैं क्या हो गया हूं, वंचित हो गया हूं, कि मैंने कलियुगा में जन्म लेकर भी महाप्रभु का गुणगान नहीं किया, महाप्रभु का गुणगान नहीं सुना, महाप्रभु के दिव्य देह को नहीं देखा और महाप्रभु की आराधना नहीं की। इससे अधिक वंचनामय जो वार्ता है कोई और नहीं है। इसलिए हमारे जो गौड़िया परंपरा के जो आचार्य हैं, उनके आराध्य कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु है। और इस संप्रदाय में तभी प्रवेश संभव है जब व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को उनकी शिक्षाओं के साथ समझने का प्रयास करता है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। सारे संप्रदायों में भगवत गीता है, भागवतम है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य चरितामृत नहीं है, जो वास्तव में सारे शास्त्रों का सार है। इसलिए प्रभुपाद भागवत अनुवाद कर रहे थे तो प्रभुपाद ने भागवतम को रोक दिया और बीच में कौन से ग्रंथ का प्रवेश करवाया? चैतन्य चरितामृत का। और चैतन्य चरितामृत का अनुवाद पूरा करने के उपरांत ही श्रील प्रभुपाद ने भागवतम की शुरुआत की है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें यह गौर चरित्र दिया है चैतन्य चरितामृत। महाप्रभु के बारे में जानते हैं, महाप्रभु के बारे में समझते हैं, तो वास्तव में ये जो गौड़िया संप्रदाय है उसके सार को हम समझ पाते हैं या ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज ने मध्य लीला में एक अध्याय है जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम। जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, ये वो अध्याय है मध्य लीला का 23वां अध्याय, जिसकी शुरुआत में ही कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं चिरात दत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतम अत्युदारम। अपावरम यो विततार गौरा कृष्णे जनव्यस्तम हम प्रपद्ये। तो वो कहते चिरात दत्तम निज गुप्त वित्तम, बहुत बहुत लंबे समय के बाद चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण ने क्या किया है, निज गुप्त वित्तम, हम भी अपना अपनी जो अपना अपना धन है वो हमारे लिए क्या है, बहुत प्रिय है, और उसको ऐसी ऐसी जगह रखते हैं ताकि किसी का हाथ और किसी की दृष्टि ना जाए। तो महाप्रभु ने भी या कृष्ण भी अपना ये जो धन है कृष्ण प्रेम रूपी उसको बहुत छुपा कर रखा है, लेकिन वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और ये प्रदान करते हैं अत्युदारम उदारता पूर्वक। क्या है वो, सो प्रेम नामामृतम, अपना जो प्रेम इस हरि नाम के माध्यम से प्रदान करते हैं। अपावरम यो विततार गौरम, और चाहे व्यक्ति कितना ही घृणित क्यों ना हो उस व्यक्ति को भी चैतन्य महाप्रभु ये जो दिव्य प्रेम है वो प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की विशेषता का वर्णन हमारे गौड़ीय आचार्य करते हैं, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या बांट रहे हैं, माधुर्य प्रेम का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। आज तक किसी और संप्रदाय में किसी और आचार्य ने और किसी और अवतार ने नहीं किया है। तो यदि व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को समझता है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति जितनी मात्रा में शरणागत होता है उतनी ही मात्रा में वो व्यक्ति अपने आप को ब्रज में पाता है या कृष्ण के सन्निकट पाता है, ये विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना वृंदावन को समझना या वृंदावन में प्रवेश असंभव है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद हमें चैतन्य चरितामृत देते हैं और कृष्णदास कविराज कहते हैं, हे न कृपा मय चैतन्य ना भजे जय जान सर्वोत्तम हैले वतारे असुर गणान। यदि कोई व्यक्ति कितना ही सर्वोत्तम क्यों ना हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा हो या सबके दृष्टि में सर्वोत्तम हो, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं करता, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं वो व्यक्ति सर्वोत्तम होकर भी राक्षस है, आसुर है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस अध्याय में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के बाद एक विशेष लीला प्रकट करते हैं और उसको कहते हैं आचार्य लीला। आचार्य का अर्थ है आचरति इति आचार्य, अपने आचरण से भगवत भक्ति की जो शिक्षा प्रदान करता है वो आचार्य है। इसलिए सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए एक शब्द कहते हैं, ऐसे नहीं कि हरिदास ठाकुर केवल एक जगह बैठकर नाम ग्रहण करते थे, नहीं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप में दोनों चीजें हैं, आचार प्रचार नामेर यही दुई कार्य। नाम के दो कार्य क्या है, कोई व्यक्ति नाम ले रहा है तो उसे दो चीजें प्रकट होनी चाहिए, आचार और दूसरा है प्रचार, ये नाम का फल है। और ये यदि नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति वास्तव में हरि नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है। तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत तेरा आर्य, तो जगत गुरु की जो सबसे पहले जो पदवी है टाइटल है वो किसको दिया है सनातन गोस्वामी ने, हरिदास ठाकुर को, क्योंकि उनके अंदर ये दोनों चीजें हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आचार्य हैं और कलयुग में दो चीजें प्राप्त करना असंभव है या बहुत ही कठिन है, एक है गुरु और दूसरा है वैष्णव। तो कलयुग में जो रियल साधु है या रियल गुरु है या वैष्णव है वो प्राप्त करना दुष्कर है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु साधु के रूप में आचार्य के रूप में या वैष्णव या सन्यासी के रूप में प्रकट होते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास के बाद अद्वैत आचार्य के घर में आए तो अद्वैत आचार्य को टेंशन नहीं आया, अरे कहां से आ गए ये सन्यासी मेरे घर में, हमें जब पता चलता है भक्त आने वाले हैं पहले से परेशान हो जाते हैं, आए तो जाने का समय निश्चित करते हैं, कब इनको भगाना है, ये एटीट्यूड से शुद्धि नहीं होगी। गृहस्थ का प्रथम धर्म क्या है? अतिथि सेवा। तो ऐसे अद्वैत आचार्य को टेंशन नहीं आया, बल्कि अद्वैत आचार्य को जब पता चला तो वो इतने आनंदित हो गए कि अपनी पत्नी और सबको बुलाकर चैतन्य महाप्रभु का वेलकम करने की योजना बनाई और आज चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर। क्योंकि जीवन की सर्वसिद्धि क्या है कि हम अपना सर्वस्व लगाए किसकी सेवा में? गुरु या वैष्णव की सेवा में सर्वस्व लगाए, हिचकिचाहट नहीं करें, तो वास्तव में कृष्ण की कृपा हमारे लिए सरल है। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, रामानुजाचार्य अपने हजारों शिष्यों के साथ, हजारों नहीं कुछ सौ शिष्यों के साथ श्रीरंगम से तिरुपति जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ, अभी तो हम फोन कर देते, मेल कर देते, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, उस समय तो कुछ नहीं था। रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ, मेरा एक शिष्य उस गांव में निवास करता है, आगे जो गांव आएगा, दो ब्रह्मचर्य शिष्यों को भेजा कि वहां जाओ और उनको बोलो कि हम रामानुजाचार्य आ रहे हैं आपके गुरुदेव, आप उनका स्वागत आदि करिए, प्रसादम रहने की व्यवस्था करिए। तो ये दो ब्रह्मचारी गए और इनका एक बहुत ही धनवान शिष्य था रामानुजाचार्य का, उसके घर जाते ही उन्हें कहा आचार्य आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। वो इतना आनंदित हो गया, अरेंजमेंट करने के लिए तैयार हो गया। अरे दोनों बेचारे ब्रह्मचारी खड़ी है ना, और ना इनको पानी पूछा, ना इनको कहां से आए, कैसे आए, पानी पिया कि नहीं, प्रसाद पाया कि नहीं, कुछ नहीं। और ये बेचारे दोनों वापस आ गए। तो रामानुजाचार्य ने, और वो वहां तैयारी करने में लगा हुआ है, रामानुजाचार्य ने पूछा मुझे बताओ आपके साथ उन्होंने कैसे व्यवहार किया, बस। हाँ, रामानुजाचार्य ने और कुछ नहीं जाना कि मेरे स्वागत के लिए क्या हो रहा है। रामानुजाचार्य ने पूछा आपके साथ मेरे उस धनवान शिष्य ने कैसे व्यवहार किया, आप वो मुझे बताओ। तो उन्होंने जो भी सच था, वो दो जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बताया कि हम तो गए बड़े उत्साह से, न्यूज देकर आए, उन्हें न्यूज दी तो वो भी आनंदित हुए, लेकिन हमें पूछा भी नहीं, हम तो वैसे ही वापस निकल पड़े। रामानुजाचार्य ने कहा मैं उनके घर में प्रवेश नहीं करूंगा, मेरा सम्मान, इनका सम्मान मीन्स क्या है, मेरा सम्मान है, वो मेरे प्रतिनिधि के रूप में मैंने भेजा था उन्हें। तो रामानुजाचार्य कहते नहीं, उनके घर नहीं जाएंगे हम। वहां रामानुजाचार्य ने कहा मेरा दूसरा शिष्य है, वो इतना गरीब कि उनके घर में एक ही कपड़ा था पहनने के लिए, वो जिनका नाम था वरद आचार्य और उनकी पत्नी थी लक्ष्मी। तो ये वरद आचार्य जब बाहर ब्राह्मण थे, भिक्षा या कार्य के लिए जाते थे, तो वो जो कपड़ा पहन के जाएंगे बड़ा सा धोती जैसा, तो पत्नी के पास अंदर कुछ नहीं है पहनने के लिए, ऐसी स्थिति थी। हाँ, लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा हम उनके घर जाएंगे और इतने सारे भक्तों को लेकर। तो रामानुजाचार्य को घर पता था, तो रामानुजाचार्य गए, निकल पड़े अपने शिष्यों के साथ, और जाते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो माता जी अंदर थी। तो उनके पास तो वस्त्र नहीं है, कैसे अपने गुरुदेव का स्वागत करें, और इतनी गरीबी कि खुद को खाने के लिए नहीं है, और ऊपर से कौन आ गए, अकेले आते तो ठीक है, इतने सारे शिष्यों को भी लेके आ गए कॉन्ग्रीगेशन के साथ। तो उन्होंने कहा जब पुकारा तो ये समझ गए रामानुजाचार्य कि उनके पास वस्त्र नहीं है। रामानुजाचार्य ने अपना जो चादर है ऊपर जो पहनते हैं वो फेंका, और माता जी ने वो पहना और अपने गुरु का स्वागत करने के लिए आ गए, और दरवाजा खोला, रामानुजाचार्य बैठे। और उस समय फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें अरेंज करने का प्रयास किया, वो बहुत सारी लंबी कथा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर किस प्रकार से वो जो लक्ष्मी है, वो जो माता जी थी, और उनके जो पति थे वरद आचार्य, ये रामानुजाचार्य की सेवा करते हैं और बहुत सारी चीजें अरेंज करते हैं रामानुजाचार्य की कृपा से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में जीवन की सिद्धि है कि अपना जो सर्वस्व है वो गुरु और वैष्णव की सेवा में नियुक्त करने का प्रयास करना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। और यहाँ अद्वैताचार्य की भी ऐसी भावना थी। अद्वैताचार्य आनंदित हुए और चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और उन्होंने इतना सारा इतने सारे व्यंजन बनाए थे और महाप्रभु आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो अभी भी सर्व नहीं तो सर्व भट्टाचार्य थे। तो अद्वैताचार्य के घर में जैसे महाप्रभु प्रवेश किए तो देखा कि एक रूम है जो पूरा भरा हुआ है प्रसाद से और उसमें बड़े बड़े तीन थालियां, एक तो धातु की थाली थी और दो बड़े बड़े केले के पत्ते जिसमें परोसा गया थे कई सारे व्यंजन। महाप्रभु को लगा कि ये तीनों थाली हम तीनों के लिए है तो लेकिन अद्वैताचार्य ने कहा आप दोनों बैठिए गौर और निताय और मैं आपको प्रसाद सर्व करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बैठे, नित्यानंद प्रभु बैठे और एक थाली थी धातु की, उनके सामने वो थाली भगवान कृष्ण को उन्होंने अर्पित की और ये दो थाली उनके लिए, क्योंकि अद्वैताचार्य इस भावना में थे कि गौर और निताय कृष्ण बलराम से क्या है, अभिन्न है, उनकी असलियत को जानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु तो इस भगवत भाव में नहीं रहते थे, वो इस भावना में रहते थे मैं कौन हूं, डिवोटी हूं, मैं सन्यासी हूं। तो देखा इतने सारे व्यंजन केले के पत्ते पर, तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे, क्या कहा प्रभु ने, जैसे महाप्रभु ने वो सारे व्यंजन देखे तो उनको अपना धर्म याद आया। कौन सा धर्म? सन्यास धर्म। हर वर्ण और आश्रम का अपना धर्म है तो सन्यास धर्म याद आया और वो कहने लगे कि ये क्या है, सन्यासीर भक्ष नहे उपकरण, उपकरण मतलब विविध व्यंजन। तो इतने सारे व्यंजन सन्यासी को खाने नहीं चाहिए, उसके लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? महाप्रभु कहते यहां खाए ले, इतने सारे वैरायटीज व्यंजन को खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कैसे है, कैसे होगा, इंद्रिय वारण, इंद्रियों को वश पे होना असंभव है। तो इस प्रकार से महाप्रभु विभिन्न पकवान को देखकर इंद्रिय कंट्रोल की भावना उनके हृदय में जागती है और महाप्रभु यहां कौन सी शिक्षा प्रदान करते हैं हमें, वैराग्य विद्या। कौन सी विद्या? वैराग्य विद्या। ये शब्द बड़ा फेमस है गौड़िया वैष्णव में। क्यों फेमस है? क्योंकि एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले और सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि सार्वभौम तुम जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य निकल पड़े जगन्नाथ जी का दर्शन करने। दर्शन किया तो उनको वहां दो भक्त मिलते हैं, एक थे जगदानंद पंडित और दूसरे थे दामोदर पंडित। इस महाप्रभु के भक्त क्या है, सारे पंडित हैं। तो ऐसे ये दो भक्त जब सार्वभौम भट्टाचार्य को मिले तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनके साथ आते हैं अपने घर और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य से रहा नहीं जाता कि अभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में है और ये भक्त दोनों जाएंगे वापस। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा करते हैं और इन दो भक्तों के हाथ में देते हैं और फिर एक ताल पत्र लेते हैं, ताल पत्र लेते हैं और उसमें अपने जो महाप्रभु की स्तुति है दो श्लोक लिख डालते हैं। दो श्लोकों को लिखकर वो ताल पत्र जगदानंद पंडित के हाथ में देते हैं चैतन्य सर्वम भट्टाचार्य और वो कहते हैं कि ये जो ताल पत्र है ये महाप्रभु को प्रदान करो। तो इन्होंने देखा नहीं क्या लिखा हुआ है, दूसरे की चीजें नहीं पढ़नी चाहिए मैसेजेस। तो इन्होंने वैसे ही सोचा कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो महाप्रभु के लिए है। जैसे ही गंभीरा में जो गेट था जिस रूप में महाप्रभु रहते थे उस रूप में जगदानंद पंडित प्रवेश करने लगे तो एक डिवोटी बीच में खड़ा हो गया, कहा जा रहे हैं उनका नाम क्या था, मुकुंद। मुकुंद फेमस कीर्तनिया थे गौर लीला में, मतलब महाप्रभु को जब नाचना होता था तो वो ढूंढते थे कौन कीर्तन करेगा, कौन कीर्तन करेगा, मुकुंद गाएगा। महाप्रभु ने कहा मुकुंद गाएगा तो मैं नाचूंगा। तो ऐसे मुकुंद वहां खड़े थे मुकुंद ने कहा जगदानंद हाथ में क्या लेके जा रहे हो? जगदानंद ने कहा दिखता नहीं, थाल पत्र ले जा रहा हूं। तो मुकुंद ने उनके हाथ से छीन लिया, छीन के पढ़ा, दो श्लोक लिखे गए थे और उन दो श्लोकों को मुकुंद जान गए कि ये ताल पत्र यदि चैतन्य महाप्रभु के हाथ में पड़ा तो चैतन्य महाप्रभु सीधा उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े, और फेंक देंगे। हाँ, क्योंकि उसमें महाप्रभु की विशेष स्तुति थी, प्रशंसा थी, और महाप्रभु को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद ने वो ले लिया ताल पत्र, और जो गेट था उसकी जो दीवार थी उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जो दोनों श्लोकांश थे उसके ऊपर लिख डाले और जगदानंद के हाथ में दिया और कहा कि जाओ चैतन्य महाप्रभु को दे दो। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वो पत्र दिया, वो ताल पत्र, और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही वो दो श्लोक पढ़े तो चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए, गदगद हो गए, और महाप्रभु ने तुरंत उसको फाड़ डाला। और क्या थे वो दो श्लोक, उसकी शुरुआत ही यही थी। और उन दो श्लोकों को जितने भी पुरी में महाप्रभु के भक्तगण थे उन्होंने कंठस्थ कर दिया था, और महाप्रभु को पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि कहां लिखा गया था, नोटिस बोर्ड तो नहीं था, दीवार में लिख दिया था उन्होंने। तो सारे भक्तों ने वहां से पढ़ पढ़ के उन दो श्लोकों को कंठस्थ किया, जिसमें सार्वम भट्टाचार्य ने महाप्रभु की स्तुति की थी। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। तो उसमें ये वर्णन किया था कि चैतन्य महाप्रभु विशेष शिक्षा देने के लिए आए हैं, और कौन सी शिक्षा? वैराग्य विद्या। तो वैराग्य का मतलब क्या है? हम तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य लागू करने के लिए एक ही व्यक्ति क्वालिफाइड है, और वो कौन है? जो उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी ही युक्त वैराग्य का सिद्धांत अपना सकता है, लागू कर सकता है, बाकियों को अलाउ नहीं है। बाकी सब क्या है? युक्त वैराग्य के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो यहां महाप्रभु वैराग्य विद्या की शिक्षा देते हैं। तो वैराग्य कौन सा वैराग्य? तो कृष्णदास कविराज कहते हैं जिससे कृष्ण भावना विकसित नहीं होती, ऐसी वस्तुओं से दूर रहना वो वास्तव में वैराग्य है। तो महाप्रभु वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, और अपना जो भक्ति है उसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य देह धारण किया और वो प्रकट हुए हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। ये पहला श्लोक था जो सार्वम भट्टाचार्य ने लिखा था। और दूसरा था कालानष्टं भक्ति योग निजं ये प्रादुष्कृतं कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढं गाढं लीयतां चित्तभृंग। तो उसमें दूसरे श्लोक में सर्व भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वंदन करता हूं, उनके शरणागत होता हूं, क्योंकि वो प्राचीन भक्तियों जो समय के साथ नष्ट हो रहा था या नष्ट हो गया था उसको फिर से देने के लिए अवतरित हुए हैं, और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो मन रूपी भ्रमर है वो क्या हो जाए, सदा चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नियुक्त हो जाए या लगा रहे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण सार्वभौम भट्टाचार्य प्रदान करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वैराग्य विद्या उसका प्रचलन करते हैं। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शरणागत होना हमें एक चीज का पालन करना, प्रतिकूलश्च वर्जनम्। शरणागति के जो छह लक्षण है उसमें चैतन्य महाप्रभु आज के श्लोक में ये एक लक्षण प्रकट करते हैं, सिखाते हैं, प्रतिकूलश्च वर्जनम्। भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको हमें निश्चित रूप से त्याग देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि सन्यासी होकर इतने सारे पदार्थों को खाएगा तो वो अपने इंद्रियों को कदापि वश में नहीं कर सकता। तो महाप्रभु यहाँ एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं और वो कौन सी है, भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, तार मध्य जिह्वा अति लोभ मय सुदुर्मति। बल्कि भक्तिनोद ठाकुर ने किसी और इंद्रिय को इतना प्रभावशाली नहीं माना। कौन से इंद्रिय को प्रभावशाली माना? जिह्वा को। हाँ, जिसको जीत पाना अत्यंत दुष्कर है। और यही बात उद्धव गीता में कृष्ण भी करते हैं जिह्वा के बारे में। भगवान कृष्ण कहते हैं जिह्वा के बारे में कि वास्तव में ये जो जिह्वा है वो अत्यंत प्रभावशाली है। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारे इंद्रियों को क्यों ना जीत ले, किंतु जब तक जीव को नहीं जीत लिया जाता तब तक वो इंद्रिय जीत नहीं कहलाता। बाकी इंद्रियों को बल्कि किसी ने वश में किया हो लेकिन अपने जिह्वा को वश में नहीं किया है तो उसने इंद्रियों को वश में नहीं किया है। किंतु यदि कोई मनुष्य जीव को वश में करने में सक्षम होता है तो उसे सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला माना जाता है। अगले श्लोक में कृष्णा, उससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, उपवास द्वारा विद्वान पुरुष जीव के अतिरिक्त अन्य सारे इंद्रियों को जल्दी अपने वश में कर लेता है। बाकी इंद्रियों को वश में करना है तो भोजन की मात्रा कम करो। जब ये टैंक फुल हो जाता है स्टमक का तो सारी इंद्रियां बहुत वेगवान होती हैं। उनको क्या चाहिए? अपनी अपनी इंद्रियों को अपना अपना फूड चाहिए, इसलिए वो लालायित होती है उपभोग करने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग अपने को खाने से दूर रखकर स्वादेंद्रिय को तृप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित हो उठते हैं। मैं भी बाकी इंद्रियों को फास्टिंग से कमजोर किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है, लेकिन जिह्वा को फास्टिंग से भी वश में नहीं किया जा सकता। उसको अपनी निश्चित मात्रा चाहिए चाहिए, हाँ कुछ भी हो। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं इस जिह्वा के बारे में। चैतन्य महाप्रभु भी और उद्धव गीता में स्वयं कृष्ण उद्धव को यह संदेश देते हुए भी, तो रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कई सारी शिक्षाएं स्वीकार की और उन शिक्षाओं को एक छोटे से ग्रंथ में उन्होंने कंपाइल कर दिया या लिख दिया। वो क्या है? उपदेशामृत। तो उपदेशामृत वास्तव में भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति का जो पूर्ण साइंस है वो उपदेश अमृत में छुपा हुआ है। और उपदेश अमृत के शुरुआत में ही इन इंद्रियों के वेगों का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। कौन से वेगों का वर्णन करते हैं? वाचो वेगम, मनसा, जिह्वा, उदर, उपस्थ आदि। हाँ, तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी वेग का वर्णन करते हैं। तो वेग का मतलब क्या है? वेग का मतलब है एक ऐसा बल या ऐसा फोर्स या तूफान। जब वो तूफान आता है हमारे जीवन में तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। कभी अनुभव है? हाँ, कोई जिह्वा इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि हम इतना खा बैठते हैं कि बाद में हमें क्या होता है, डाइजेस्ट करने में, त्यागने में कितना कष्ट होता है। पूरा एक दिन पूरा हम तहस नहस हो जाते हैं। उसको प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम के, मानो वैसे ही जैसे ही हमने अपने किसी इंद्रियों को छूट दी, एक इंद्रियों को। हाँ, ये वैसे ही है जैसे समंदर में कोई नाव है और बहुत तेजी से हवा आती है और उस नाव को बहाकर दूसरी दिशा में ले जाती है। उसी प्रकार से किसी इंद्रियों को हम छूट देते हैं तो हमारे जीवन की वो इंद्रिया क्या बना, दिशा बदल देती है और जीवन तहस नहस कर देती है, इतना वेग है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो वेग है इंद्रियों के, इनकी तुलना आसुर से की गई है। वो कभी कभी इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि अत्यंत कठिन होता है एक व्यक्ति को। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से यहाँ रसना का वर्णन करते हैं। रसना मंस जीवा, जिसके द्वारा हम स्वाद चखते हैं। ये जिह्वा ऐसी है, साइज में बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? हर एक का अलग अलग साइज है जिह्वा का। हाँ, गाय की इतनी लंबी है, मनुष्य की तो अलग अलग साइज की जिह्वा है, लेकिन ये इतनी छोटी है लेकिन बड़े बड़े कार्य करती है। हाँ, इसकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार से ये कुल्हाड़ होती है, साइज में बड़ी छोटी है लेकिन बड़े बड़े वृक्षों को क्या कर देती है, धाराशाही कर देती है। उसी प्रकार से ये जीवा है, बड़े बड़े व्यक्ति साइज कितना बड़ा होता है, कोई कोई व्यक्ति इतना हाथी के समान चौड़ा मोटा होता है। तो इतने बड़े बड़े लोगों को भी इतनी छोटी सी जीवा क्या करते है, अपने वश में कर देती है, जीवन को नष्ट कर देती है। केवल किस लिए, अग्र भाग को विशेष स्वाद चखने के लिए। देखो उदाहरण देखो, बेचारे इंद्र, इंद्र को जब शाप मिला तो क्या बने, मिस्टर पिग बने। और जैसे वो सुअर बने, और यहाँ ब्रह्मा ने देखा कि अरे इंद्र पद रिक्त है, खाली है, तो इनको लाया जाए। ब्रह्मा जी गए अपने हंस वाहन को लेकर, पहुंचे और उन्होंने कहा अभी इंद्र तो सुअर बने थे, उनकी पत्नी भी थे और पूरा बच्चों का लाइन खड़ा था वहां, छोटे छोटे पिग्स। तो उन्होंने कहा चलो स्वर्ग में चलो वापस। इंद्र ने कहा कैसे आ सकता हूं, इतना स्वादिष्ट पदार्थ यहाँ मिल रहे हैं गरम गरम, इनको छोड़कर कहा वो स्वर्ग सुख से भी अधिक सुख कौन सा महसूस हो रहा है उसे, मल खाने का। सुअर योनि में मल खा रहा है इंद्र, क्या किसके वश में, टंग, स्वादेंद्रिय इतने पावरफुल है कि बाकी सारे सुख क्या है उसके सामने, शून्यायतम जगत सर्वम। बाकी सारी चीजें शून्यवत हो जाती है जब हम स्वाद के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिह्वार लालसे इति उति धार, जिह्वा की लालसा को तृप्त करने के लिए व्यक्ति इधर उधर भागता है, शिष्णोदर परायना कृष्ण नहीं पाए, ऐसा व्यक्ति कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज का उदाहरण दिया करते थे, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बर्मा रंगून में एक नया नया गौड़िया मठ स्थापित किया था, तो वहां उनके कुछ ब्रह्मचारी रहा करते थे, और एक ऐसा अशोका एंक्लेव जैसा बड़ा सा ऐसा सोसाइटी होगा, और बीच बीच में एक चौक था, और वहां के लोग क्या थे, मंदिर में वहां डिटीज को गौरनिताई के विग्रह थे और राधा कृष्ण थे, उनके लिए जो भी भोग बनते थे शुद्ध देशी गाय का घी इस्तेमाल होता था, और जैसे उसकी सुगंध निकलती थी डीटी किचन से बाहर, तो सारे जो सोसाइटी के लोग थे वो नाक बंद करते थे, उससे कहां से गंदगी आई है। और वो सारे मूर्ख क्या करते थे, एक फेस्टिवल मनाते थे हर महीने या छह महीने में, चौक में बड़ा सा एक मटका रखते थे लोहे का बहुत ही बड़ा, और किसी के घर में छिपकली चूहा कुछ भी मर जाए, उठा के उसकी पूछ पकड़ के हाथ ऐसे कर करके लाके ढक्कन खोल के उसके अंदर डालते थे, और ऐसे बहुत सारे गंदे प्राणी मर मर के उसमें सड़ जाते थे, और उनका एक विशेष ऑयल सा निकलता था, और फिर छह महीने में या कुछ महीने में फिर उसका ढक्कन खोला करते थे, और ऐसी दुर्गंध आती थी तो सब अपनी नाक ऐसी बड़ी करते थे सुगंध देने के लिए वहां। तो वो कहते हैं, और उसको क्या करते थे वो लोग, वो विशेष ऑयल जो बन जाता था इतना गंदा, उसको सब आपस में बांट देते थे, और जो भी भोजन बन जाता था उसमें क्या करते थे, मिलाकर परोसा करते थे। किसके लिए, टंग के लिए। इसलिए आज भी लोग पिज्जा खाने के लिए इटली जाएंगे, और कुछ लोग तो मतलब देखो मनुष्यों की इतनी बुरी स्थिति है, केवल अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए चांदनी चौक जाएंगे, इसलिए गोलगप्पे, बल्कि जो चाइनीज आदि हैं वो तो मेंढक की चटनी बनाकर खाते हैं। तो मतलब इस संसार में केवल 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 जिह्वा की तृप्ति के लिए लोग इतने सारे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जिह्वा से हम छह प्रकार के रस क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से भगवान भी इस जीवा का वर्णन हम भगवत गीता में करते हैं 17वें अध्याय में, कि जो भोजन अलग अलग गुणों के लोग अलग अलग प्रकार के जो भोजन है उनको स्वीकारते हैं। तो जो भगवान कृष्ण है श्रीमद् भागवतम में कहते हैं यदि व्यक्ति ऐसी जिह्वा को वश करने में यदि कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा को वश नहीं कर पाता तो वो व्यक्ति वास्तव में अपने मृत्यु को क्या करता है, आमंत्रित करता है। भगवान उद्धव को बोलते हुए वो कहते हैं जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनोरस विमोहिता मृत्यु मृच्छति सद्बुद्धिर् मेनस्तु परिशेर्यथा। तो भगवान कहते हैं जिस तरह जीव को भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीव की अत्यंत उद्वेलित करने वाले उमंग से मोहग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। हाँ जी, उद्धव को भगवान श्रीमद् भागवतम में बताते हैं। और सातवें स्कंध में प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि इस जिह्वा के वश में होने के कारण व्यक्ति का जीवन कुत्ते के समान हो जाता है। वो कहते हैं संतुष्ट केन वा राजन वर्तितापि वारिना, मतलब जो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है वो पानी पीकर भी सुखी रह सकता है इस संसार में या रह जाता है, लेकिन औपस्थ जभ्य कार्पण्या ग्रह पालयते जना। हाँ, यदि कोई व्यक्ति इन दो इंद्रियों के वश में हो जाता है, जनन इंद्रिय और दूसरा है जिह्वा, तो वो व्यक्ति वो कहते हैं अपना जीवन कुत्ते के समान जीता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। और एक ब्राह्मण के लिए भी वो कहते हैं असंतुष्ट विप्रश तेजो विद्या तपो यशः श्रवंति इंद्रिय लौलेन ज्ञानं च वाक्रियते। वो कहते हैं यदि कोई ज्ञानवान व्यक्ति या ब्राह्मण भी असंतुष्ट है और वो सदैव अपनी जिह्वा की पूर्ति के लिए अलग अलग जगह भ्रमण करता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ब्राह्मण वो भोजन प्रिय होते हैं, अलग अलग लोगों के घरों में इसलिए जाते हैं कि वहां अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने को मुझे मिलेंगे, तो ऐसी भावना से कोई ब्राह्मण भ्रमण करता है असंतुष्ट अवस्था में तो उसकी चारों चीजें विनाश खत्म हो जाती है उसके जीवन से। एक तो उसका तेज बल विद्या तप यश, और वो कहते हैं ऐसा इंद्रिय लोलुप ब्राह्मण भी क्या करता है धीरे धीरे उसका ज्ञान पूर्ण रूपेण खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं रसो वर्जम रसो पेश परम दृष्टवा निवर्तते। तो इस रसना से मुक्ति प्राप्त करना है, इस जिह्वा को वश में करना है तो क्या करना होगा, उन्नत रस का अनुभव करना होगा। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहा करते थे भजन डिस्ट्रॉयज भोजन, भोजन क्या करता है, भोजन भजन को डिस्ट्रॉय करता है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहा करते थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज तो अपने शिष्यों पर बड़ा ध्यान रखते थे। एक बार उनके टेम्पल में गोवर्धन पूजा थी और भक्ति सिद्धांत महाराज वहां नहीं थे मंदिर में, तो एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा स्कॉलर था, विद्वान था, डिवोटी भी था, वो आया करता था और सीनियर था। वो आता था तो भक्ति सिद्धांत महाराज के सारे शिष्यों को उनकी सेवा करनी पड़ती थी, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ते थे, और वो आता था फेस्टिवल में प्रसाद के लिए बस। जब फेस्ट हो गए उसी दिन वो टेम्पल आएंगे। तो एक दिन वो महात्मा जी प्रसाद पा रहे थे और बहुत सारे मालपुआ लेकर बैठे हुए थे और वो खाते जा रहे खाते जा रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे वहां। उन्होंने कहा कि आप मालपुआ खा रहे हो या मालपुआ आपको खा रहा है। तो जैसे ये सुना वो बिल्कुल पानी पानी हो गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को उन्होंने कंप्लेंट की। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते ये सही है कि आपको इतना अधिक अपने जिह्वा के वेग से प्रभावित नहीं होना है। हाँ, नहीं तो क्या होगा, जो कृष्ण भजन है वो आपसे दूर चला जाएगा। श्री प्रभुपाद भी जब नया नया उन्होंने ये संडे लव फिश शुरू किया था तो अकेले स्वयं कुकिंग करते थे, और एक बार उन्होंने संडे फिस्ट के लिए पूरा कुकिंग करके रखा पूरा फिस्ट, और फिर बहुत सारे लोग आए तो उनके जो मंदिर के भक्त थे न्यूयॉर्क में जो पहला स्टोर फ्रंट था उसमें जो सारे नए नए बच्चे थे उन सबने क्या किया कि प्रभुपाद ने बनाया हुआ था सब कुछ, प्रभुपाद प्रवचन देना शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने प्रवचन शुरू किया तो यहाँ ये सारे आ गए प्रवचन छोड़कर भक्त लोग, और जितना प्रसाद बनाया था वो सारा खा लिए और प्रभुपाद प्रवचन दिए, कीर्तन किए और फिर कहा कि अभी आप सब रुकिए, आपके लिए प्रसादम की व्यवस्था है। प्रभुपाद किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रसाद सारे भक्तों ने तमाम खत्म कर दिया है। प्रभुपाद को गुस्सा है। प्रभुपाद ने कहा कुछ लोग होते हैं बल्कि अन्न जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, लेकिन आप हो, डांटते हुए उनको कहा कि आप क्या कर रहे हो, खाने के लिए जी रहे हो। तो ठेच लगी उन सारे भक्तों को, फिर से उनकी सामर्थ्य नहीं हुआ कि किचन में प्रवेश करें बिना प्रभुपाद को पूछे। इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग जो जिह्वा के वश में है उनको जिह्वा लंपट कहा जाता है, मतलब जिह्वा के अत्यधिक वश में है। तो ऐसी ये जिह्वा है जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अद्वैत आचार्य को, मैं तो सन्यासी हूं, आप मुझे क्यों इतने सारे व्यंजन खिला रहे हो। बल्कि महाप्रभु ने एक दूसरा पत्ता मांगा इसका, केले का, और केले का पत्ता लाकर उनको कहा कि देखो इसमें थोड़ा सा चावल दे दो और एक ही बॉयल सब्जी दे दो मुझे, तरकारी एक ही दे दो, ज्यादा नहीं। तो इनको गुस्सा आ गया। अगले श्लोक में है अद्वैत आचार्य कहते हैं मैं जानता हूं तुम कितने खाते हो, यहाँ क्यों मुझे दिखा रहे हो, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में पूरे दिन इतना खाते हो तुम्हें हाथ धोने का टाइम नहीं है। अब तो आगे वो कन्वर्सेशन बढ़ेगा धीरे धीरे। तो बल्कि महाप्रभु वहां ये विशेष शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी जो जीवा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको वश में किया जा सकता है, उस वेग को कैसे, केवल 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 कृष्ण प्रसाद खाकर। केवल व्यक्ति एक नियम का पालन करे कि कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद में ग्रहण करूंगा, भक्तों के द्वारा बना हुआ, तो वो कंट्रोल हो सकती है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार गलती से भोग न लगा हुआ आम खाया तो उन्होंने जीवन भर आम को स्वीकार नहीं किया। श्रील प्रभुपाद के पास हृदयानंद गोस्वामी जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो गए और प्रभुपाद को कहा प्रभुपाद बाकी सारी इंद्रियां वश में हो सकती, मेरी जीवा आजकल बहुत मुझे परेशान कर रही है। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद कहते हैं केवल प्रसाद खाओ, प्रसाद के अलावा यहां वहां कुछ खाते रहते होंगे जो हम सब करते हैं तो फिर वश में नहीं हो सकते, प्रसाद तक ही सीमित रखना चाहिए। कंठी का मतलब क्या है, कंठ के अंदर, कंठ से नीचे प्रसाद के अलावा कुछ नहीं जाएगा, इसलिए हम कंठी धारण करते हैं। हाँ, या ये निशान है कंठी का। फिर एक बार एक भक्त प्रभुपाद के पास गया और प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद, प्रभुपाद का पर्सनल सेवक था, वो कहता है कि प्रभुपाद इंद्रियों को वश में करना, कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है, कठिन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कहां फंस गया, छोड़ के चला जाओ। प्रभुपाद कहते हैं चैंट एंड प्रे, हरे नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भक्त बोला प्रभुपाद वो भी डिफिकल्ट लग रहा है। प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोले मुझे भी तो डिफिकल्ट महसूस होता है। इस प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें कहा लेकिन क्या करो, तुम केवल एक चीज पालन करने का प्रयास करो, सिंपल जो फूड है प्रसाद है वो खाते रहो, फिर आपको ये समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इस जीवा को वश में किया जा सकता है। और वास्तव में प्रभुपाद कहा करते थे सब कुछ फेल हो सकता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, लेकिन जो प्रसादम है वो कभी फेल नहीं होगा, वो अपना काम जरूर करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये जो आंदोलन है ये किचन रिलीजन है, और इसी कारण अपने एक शिष्य का नाम उन्होंने कीर्तनानंद रखा था, लेकिन जानबूझकर उसको जब पुकारते थे तो क्या बोलते थे, किचनानंद, किशनानंद इधर आओ। वो पहले ऐसे डिवोटी थे जिनको प्रभुपाद ने कुकिंग सिखाया था। तो इस प्रकार से ये जो फूड है बहुत हमारे भजन पर प्रभाव डालता है। इसलिए अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विषयरा अन्न खाइला दूषित है मन। विषय व्यक्ति ने बनाया हुआ भोजन हम यदि खाते जो भक्त नहीं है तो हमारा मन निश्चित रूप से दूषित होगा। दूषित मन ना है कृष्णेरा भजन। और जब मन दूषित हो जाता है तो फिर कृष्ण का भजन करना बहुत कठिन हो जाता है, असंभव सा होता है। इसलिए जब द्रौपदी ने भीष्म को बोला कि क्या इतना प्रवचन इतना लेट क्यों दे दिया आपने, जब शरसैया लगाई बांध था उसे दूसरे दिन प्रवचन क्यों नहीं शुरू किया पांडवों को, द्रौपदी गुस्से में आकर बोल रही थी उन्हें, ये सब गए थे ना जब प्रवचन सुनने, 51 डेज शायद। हाँ, भीष्म कृष्ण ने सारे पांडवों को भेजा था, जाओ भीष्मा से शिक्षा ग्रहण करो जो शरसैया में लेटे हैं। तो पूरा प्रवचन के बाद द्रौपदी गए थे प्रश्न, तो कहा, तो उन्होंने कहा इसलिए मैं बाद में शुरू किया क्योंकि मैंने विषयी लोगों का भोजन खाया था और उससे सारा ब्लड क्या हो गया है, अभी चला गया है, तभी मैं ये शिक्षा दे पा रहा हूं। इसी कारण से कृष्णदास कविराज सदैव रघुनाथ दास गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं, अजन्म ना दिल जिवाय रसे रस स्पर्शन। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जीवन भर अपनी जिह्वा को कभी भी स्वादिष्ट व्यंजनों को प्रदान नहीं किया। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वहां क्या खाते थे, पहले तो अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर जब आए महाप्रभु के पास तो जगन्नाथ मंदिर में जहां प्रवेश करते हैं सिंह द्वार की जो सीढ़ियां हैं 24, उसके ऊपर खड़े होकर वो जो भी आए उनसे मांगते थे, पुजारी आकर उनको देते थे प्रसाद। फिर उनको लगा ये क्या है, वैश्य की तरह कौन आएगा मुझे देगा प्रसाद, कौन आएगा, उन्होंने कहा ये स्थान ठीक नहीं है। फिर जहां लंगर होती थी वहां रघुनाथ दास गोस्वामी जाते थे अपना कमंडलू लेके। फिर उनको लगा ये भी उचित नहीं है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये स्वीकार किया और महाप्रभु पूछते थे अभी आजकल रघुनाथ कहां प्रसाद पा रहा है, महाप्रभु हमेशा पूछा करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कौन सा प्रसाद पाते थे, जगन्नाथ मंदिर में जो मार्केट है जहां वो राइस आदि सेल होता है, वो जो बच जाता है और वो फेंक देते हैं, जिसको मनुष्य नहीं खा सकता गाय खाती है, वो सारा फेंकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसको ले लेते थे, चावल को जो फेंका गया है, और उसको धोते थे और उसको थोड़ा सा नमक डाल के खाते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो चैतन्य महाप्रभु जाते एक दिन और कहते कि हे रघुनाथ, मुझे पता चला है कि तुम अकेले कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हो। अब ये तो सोचने लगे कहा मैं स्वादिष्ट क्या खा रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उनकी कुटिया से ये जो राइस है छीन लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यदि हम कृष्ण प्रसाद तक ही सीमित रहते हैं तो हमारी जो जीवा है सदैव कृष्ण का गुणगान कर सकती है। तो जीवा से दो चीजें होती हैं, एक तो प्रभुपाद कहते हैं हम भोजन करते हैं और दूसरा है ये सदैव बोलती रहती है। तो इसलिए यदि हम इसके द्वारा नाम रूप गुण लीला का वर्णन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो जीवा है हमारे कंट्रोल में हो सकती है, जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु हमें यहाँ शिक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जीवा इतनी प्रभावशाली है कि हमारे जीवन को भी नष्ट कर देती है और दूसरों का जीवन भी बर्बाद करती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, दांत, एक बार ये जीवा दांतों के अंदर आ गई, काटते ना हम दांतों से, तो ये जीवा ने बोला अरे आपने मुझे काटा, दांतों को बोला, दांत बोले तुम तो अकेली हो और हम कितने हैं, बहुत लप-लप करती हो, हमेशा बाहर निकलना चाहती हो। और ये भी गुस्सा आ गया जीवा को। जीवा कहती है मैं अकेले हूं, मुझे छोटी मत समझना, मैं थोड़ी सी चलूंगी तो आप सारे क्या हो जाओगे। बाहर आ जाओगे, हम तो इतनी पावरफुल है। इसलिए कहते ना द्रौपदी, हाँ द्रौपदी को नहीं जो बोलना था वो बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा है, पूरा महाभारत सीरीज खड़ा हो गया। तो मतलब जीवा हमारे जीवन को खत्म कर सकती है और दूसरों के जीवन को भी हम विनष्ट कर सकती है। शिशुपाल जन्म लेते ही जीवा शुरू किया बोलना, और क्या कृष्ण नाम नहीं, कृष्ण के लिए गालियां, और फाइनली अपने मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। हाँ, जैसे वो श्रृंगी ब्राह्मण था, उसने भी अपनी जीवा का इस्तेमाल करके किसको श्राप दिया, हाँ परीक्षित महाराज को। और मंथरा, पूरे रामायण की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, मंथरा के जीवा से। मंथरा कैकेयी को क्या बोली उसके द्वारा, हाँ जो कैकेयी ने अपना जीवन उध्वस्त कर दिया। तो इस प्रकार से जो जीवा है, हाँ, और इस जीवा का सबसे खतरनाक उपयोग क्या है, भक्तों के प्रति वैष्णव अपराध, हाँ चैतन्य महाप्रभु के प्रति अमोघा, रामचंद्रपुरी, ये सारे उदाहरण हम सुनते हैं। तो इस प्रकार से यदि सॉल्यूशन यही है कि मौनम क्या होना चाहिए, हमें मौन धारण करना चाहिए, जो वाणी की एक तपस्या है। और भक्तों के लिए मौन क्या है, प्रभुपाद कुरुक्षेत्र गए, हाँ महाराज हमेशा बोलते कि मैं प्रभुपाद के साथ था कुरुक्षेत्र में, कहते कि वहां जब मेला लग रहा था तो वहां जब हम गए तो देखा कि एक साधु ने बड़ा सा लॉक लगाया हुआ है, यहाँ छेद बना के दोनों होठों में बड़ा सा लॉक लगा के ताला चाबी। तो प्रभुपाद के पास कोई भक्त आया और उसने कहा प्रभुपाद देखो वो साधु कितना महान है, पूरा अपना मुंह बंद कर दिया है, लॉक लगा के ताला और चाबी भी है, कहते मौन है कितने सालों से। प्रभुपाद ने कहा वो पागलपन है, असली मौन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कलियुगा में मौन की व्याख्या करते हैं, ओष्ट स्पंदन मात्रेन कीर्तनम तु ततो वरा, दोनों ओठों को हिलाते रहना जिसके द्वारा क्या होगा, कृष्ण कीर्तन होगा, और जिससे इस कली के भयावह स्थिति से व्यक्ति बाहर निकल सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में यही चर्चा कर रहे हैं कि हमें भोजन ग्रहण करना ही है तो कृष्ण को अर्पित जो प्रसाद है उसे ग्रहण करना चाहिए और अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।